हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक क्रमांक 29 आश्चर्यजनक श्लोक है, तो जरा विचार करेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापि नम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इस श्लोक का प्रत्यक्ष अनुभूति जगत में प्रचार करते हुए और खुद भी अपने जीवन में इसका अनुभव करने की अक्षमता को के द्वारा हम समझ सकते हैं। आत्मा इस शरीर से और मन से और बुद्धि से और मिथ्यांकार से पूरी तरह से पृथक है, लेकिन भगवान की अविद्या शक्ति के कारण हम मिथ्यांकार से अभिभूत हो जाते हैं और अपनी पहचान मन बुद्धि और शरीर से करने लगते हैं। और ये पकड़ इतनी तगड़ी है कि सुनने के बाद भी, समान भाषा में बोलने चलने के बाद भी कि ये मेरा शरीर है, मेरा लीवर है, मेरा पेट खराब हो गया, मेरी आंखें हैं, कभी हम विचार नहीं करते कि हम हैं कौन, क्या हम इससे पृथक हैं। ये तक बोलते हैं कि मेरा मन खराब हो गया और अनुभव भी करते हैं कि मेरा मन क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने बारे में, वास्तविकता के बारे में, अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई बोध स्वतः नहीं होता और सुनने के बाद भी नहीं हो पाता। तात्पर्य, चूंकि गीता उपनिषद उपनिषद के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। शून्यापि बहुभिर् युनलभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। क्या आश्चर्य है कि वही छोटी सी आत्मा, वही छोटा आत्मा का अणु ब्रह्मा जी के शरीर को भी चला रहा है और वही आत्मा चेतना के निम्नगामी होने के कारण एक बैक्टीरिया के शरीर में है और उसको भी चला रहा है। यानी किसी भी शरीर में रख देने मात्र से आत्मा के पास ये शक्ति रहती है कि उसको वो चला सके। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। अर्थात भगवान भी समझाएं तो भी अगर दुराचारी है और अल्पज्ञ है, यानी ज्ञान में कम है और वो भगवान का भक्त नहीं है, उसका आचरण सही नहीं है, तो भगवान की बातों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए भगवान ने बोला है कि भगवद गीता के ज्ञान को भक्तों को, श्रद्धालुओं को और जिनके जीवन में कुछ तप है उनको देना चाहिए। तो आप कहेंगे कि तप से भगवद गीता को समझने की क्या संबंध है। सात्विक तपस्या से चित्त का मार्जन होता है और फिर जब चित्त का मार्जन होता है तब हम भगवद गीता के ज्ञान को अंतर्हित या समझ पाते हैं। अगर केवल बुद्धि होने मात्र से व्यक्ति भगवद गीता को समझ पाता तो सारे वैज्ञानिक भगवद गीता को स्वीकार कर लेते, लेकिन व्यक्ति के जीवन में पुण्य होना चाहिए, कुछ सुकृत होना चाहिए, तब उसको भगवद गीता जैसे शास्त्रों में सहज श्रद्धा होगी और उसको स्वीकार कर पाएगा। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। आत्मा विराट और लघु नहीं होती है, हमें समझ में आना चाहिए, लेकिन आत्मा की शक्ति के बारे में हमने चर्चा किया था, वह चेतना तो अगर बड़े शरीर में रहता है तो वही चेतना पूरे शरीर में उसी मात्रा से उसी तरह से व्याप्त रहती है जैसे एक छोटे बैक्टीरिया के शरीर में। ये बहुत अद्भुत बात है। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब की रोशनी है, अगर एक छोटे से बल्ब को बहुत बड़े रूम में लगाया जाए तो उस रूम में जो पूरी जगह रोशनी तो व्याप्त होगी लेकिन दूर के छोर में रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी, इस बात को हम समझ सकते हैं। लेकिन आत्मा चाहे बड़े शरीर में हो चाहे छोटे शरीर में, जिस भी शरीर में रहती है उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त होती है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। आत्मा की संरचना हर प्रकार के भौतिक तत्व से परे है और इसी कारण से उसके पर जब विचार किया जाता है तो आश्चर्यजनक लगता है, समझ में नहीं आता है। अतः लोग हाँ उसको पढ़ चुके हैं, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति या माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। जीवन संघर्ष क्या है? हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मृत्यु ना हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम वृद्ध ना हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको बीमारी ना हो, लेकिन ये बार बार आएंगी क्योंकि ये हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली शक्तियों के द्वारा हमारे सामने परोसी जाती हैं। और क्यों परोस रही जा रही हैं? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अते माया दे तार संसार दुख। अनादिकाल से जीव कृष्ण को भूला हुआ है, इसी कारण से माया उसको अधिक अधिक दुख देती रहती है। तो जितना हम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को करते हैं उतना ही जो गांठ है मिथ्या अहंकार की कि मैं ये शरीर हूँ, ये और गहरी होती चली जाती है। और जितना गहरी हो जाएगी उतना ही ये जीवन संघर्ष बढ़ जाएगा। जितना मैं अपनी पहचान करूँगा कि मैं ये शरीर हूँ, उतना ही शरीर की परिणामों से मैं प्रभावित होऊंगा। जैसे जितना मैं गहरे अपने स्वप्न में चला जाऊँगा उतना ही मात्रा में मैं ये कष्ट का अनुभव करूँगा कि मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई काट रहा है, इस प्रकार से। और जितना हम स्वप्न से बाहर आ जाएंगे उतनी मात्रा में हम उस स्वप्न की परिस्थितियों से सुख दुख से अलग हो जाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात इस लाइन में आ रही है कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगा रहता है, इंद्रियों की सेवा में लगा रहता है, तो उसको अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं देती हैं इंद्रियां। ये बहुत ही डरावनी बात है। पूरा जीवन व्यक्ति का व्यतीत हो जाएगा, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, उन सभी कार्यों का उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रियां हमें कभी सेवा से निवृत्त, हमें कभी रिटायर करती ही नहीं है और भगवान के बारे में जानने का मौका जीवात्मा खो बैठता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जवानी से ही कृष्ण भक्ति का अनुशीलन में लग जाते हैं ताकि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से तुरंत मुक्ति मिल जाए। जैसे मैं इस समय भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो कम से कम इस समय तुरंत इंद्रिय तृप्ति से के कार्यों से बिल्कुल अलग हो जाता हूं। ये बहुत अद्भुत है। लाइट ऑफ कीजिए और लाइट ऑन कीजिए, दिन और रात, या तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या हम माया की सेवा कर रहे हैं। बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि हम कृष्ण की भी सेवा करें और माया की भी सेवा करें। एक क्षण में, जिस क्षण हमारे पास अभी है, या तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या माया की सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से नियोजित रहते हैं तो इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति की भावना में लगने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। ये भक्ति और इससे हमारा मोह जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। आप में से जो लोग भी भक्ति में आए हैं, इस्कॉन के भक्तों के संग में आए हैं, आप विचार कीजिए कि जब तक हमने भक्तों के मुख से सुना नहीं था कि हम शरीर नहीं हैं और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परेशानी में पड़े हुए हैं, हमारे जीवन में इन परेशानियों का अनुभव करते हुए भी कभी कोई विचार नहीं आया कि मुझे इन परेशानियों से मैं पीड़ित हूं और मुझे इसका हल खोजने का प्रयास करना चाहिए। अपितु सुनने के बाद भी लोग इसके महत्व को समझते नहीं। अगर आप उनको बोले कि आप 16 माला जप करें या हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और भगवान को प्रसाद भोग लगा के प्रसाद पाएं और भक्ति के अन्य नियमों का पालन करें, तो उसमें उनकी श्रद्धा रुचि नहीं होती। यानी कि उनकी उनको यही नहीं समझ में आ रहा है, या हम लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितनी बड़ी परेशानी में हैं। इस समय रात के 10:50 हैं, क्या मुझे पता है कि मैं कल मंगल आरती में जा पाऊंगा, जिंदा उठूंगा? कितने लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कितने ही यंग लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, और उसके बाद सारी जो हम यहाँ पे पूंजी इकट्ठी करते हैं वो सब छोड़ करके फिर दूसरी जगह जाना है। और सब बातें बोलो, प्राय भारत में तो लोग हाँ हाँ करते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को समझते नहीं, इस चक्र में जो हम फंसे हुए हैं। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई दो लोग एक रूम में बैठे हैं, इसका अर्थ नहीं है कि दोनों का ज्ञान का स्तर, दोनों के वैभव का स्तर, दोनों की चेतना का स्तर एक ही होता है। एक बार क्लास देते समय मैं कॉलेज में क्लास दे रहा था, तो उसमें बोल रहे थे आत्मा और परमात्मा तो शरीर में रहते हैं तो दोनों एक हैं। तो मैंने सिंपल सा उनसे प्रश्न किया कि इस समय मैं क्लास दे रहा हूँ, क्या मैं आपका टीचर हूँ? मैंने कहा हाँ। क्या आप मेरे स्टूडेंट हैं इस समय? हाँ। क्या हम दोनों एक ही रूम में बैठे हैं? हाँ। दोनों ही लोग एक ही रूम में बैठे हैं तभी तो क्लास हो रही है, FM पे तो अगर क्लास ना हो रही हो तो भी उन दोनों में ज्ञान का, व्यक्तित्व का, इंडिविजुअलिटी का अंतर है। उसी प्रकार से परमात्मा और आत्मा दोनों ही शरीर में निवास करते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी शरीर से लिप्त नहीं होते, अर्थात परमात्मा कभी भी अपनी पहचान शरीर से नहीं करते। और आत्मा का ये कह सकते हैं ये गुण है कि वो तटस्थ होने के कारण शरीर से अपने शरीर से अपनी पहचान कर लेता है, माया से प्रभावित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। थोड़ा समझिए इस बात को। सिद्धांतिक रूप से अगर हमने स्वीकार कर भी लिया कि हम आत्मा हैं, तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा कृष्ण का दास कैसे है, या है भी या नहीं पता नहीं। तो अगर मान लीजिए सिद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ, लेकिन अगर कृष्ण की सेवा ना करके फिर माया की ही सेवा कर रहा है, तो उसको इस ज्ञान से प्रैक्टिकली कोई लाभ नहीं हुआ, केवल सिद्धांत समझ में आया। तो केवल फिलोसॉफिकल नॉलेज ये सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है हमारी मुक्ति के लिए। हम मान लीजिए किसी रास्ते पे जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जयपुर मान लीजिए आप जा रहे हैं, तो जयपुर वृंदावन से 300 किलोमीटर दूर है मान लीजिए, तो आपको रास्ता मालूम चल गया, ठीक है। लेकिन अगर हम गाड़ी पे ना चलें या पैदल ना चलें, कहीं भी चलने की क्रिया ना करें, तो हम अपने गंतव्य जयपुर को नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार से केवल ये सुन लेना कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। हमें आत्मा की क्रियाओं को करना होगा जो कृष्ण के ही संबंध में होनी चाहिए, जैसे भगवान का नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना। ये सारे कार्य इंसानों के नहीं हैं, ये कार्य भक्तों के हैं, आत्मा के कार्य हैं। जब हम भगवान के धाम पहुंचेंगे भगवत कृपा से, जब भी पहुंचें, तब वहां पे भगवान की आरती करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो जो क्रिया हम आध्यात्मिक जगत में करते हैं, वही क्रिया का अभ्यास हम इस जगत में करते हैं। तो परफेक्शन से पहले हर व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी ही होती है। कोई मृदंग बजाना सीखे, चाहे वो गिटार बजाना सीखे, या कुछ जगत में कोई भी कला सीखे, उसको पहले अभ्यास करना होता है। तो ये जो कृष्ण से प्रेम करने की कला है, ये हमको बाह्य रूप से तो नहीं सीखनी है, लेकिन हरि नाम और हरि कथा करते करते ये प्रेम स्वतः भगवान के प्रति प्रकट हो जाता है, ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की स्थिति को समझता है कि वो कृष्ण का नित्य अंश है, नित्य दास है, और उनकी सेवा में लग जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। बहुत सुंदर बात है। आज ही एक भक्त बोल रहे थे कि कौन भगवान है? तो उन्हें बोला कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवद गीता में लिखा है। बोले नहीं, आप वेदों को पढ़िए, आपको तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। अद्भुत बात है कि भगवद गीता जैसे ग्रंथ को सारे महान आचार्य स्वीकार करते हैं, और ये कोई किसी समाज के व्यक्ति अपनी धारणा को लागू करते हुए कह रहे हैं कि वेदों को पढ़िए और भगवद गीता को ना पढ़िए। जबकि हमने पहले की चर्चाओं में बात करी थी कि भगवद गीता भी स्मृति में श्रुति शास्त्र है, क्योंकि श्रुति में भगवान डायरेक्ट बोलते हैं, तो इसमें भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं और हम उसे सुन रहे हैं। तो ये भगवद गीता श्रुति शास्त्र है, इसको स्मृति मानना ये मूर्खता है। तो ऐसे लोग अपने मूर्ख कारणों के कारण, बेवकूफी के कारण भगवान में, भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि वो भगवान है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करना चाहते। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार, व्यक्ति को स्वीकार कर रहा है, तो ये बहुत बड़े सुकृत का लक्षण है। किसी के जीभ पे भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, नाम आ रहा है, तो समझना चाहिए कि उसने कोटि कोटि जन्म में बहुत सुकृत किया है, तब उसके श्रद्धा हुई है और भगवान अपनी कृपा से उसके जीव पर नाम के रूप में आ रहे हैं। और ये होता कैसे है, प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं, शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा। शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा का क्या अर्थ है? भक्तों की इच्छा होती है कि भगवान के भक्त बढ़े, भगवान की कीर्ति फैले, उनका प्रचार कार्य बढ़े, और उसके लिए वो प्रयास करते हैं। और जब किसी बंधात्मा को देखते हैं तो उनकी हृदय में स्प्रिया होती है, कितनी अच्छी बात होती है अगर ये व्यक्ति भक्त बन जाता। तो ये किसी सुकृत की वजह से नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी सुकृति के कारण ऐसा हो जाता है। ये ठीक है, हमारी सुकृति रहती है तो हमारे अंदर ये फेवरेबल एटीट्यूड रहता है, साधु के प्रति श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, सत्य बात है। लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा जो है वो हमारे किए गए सुकृत पे पूरी तरह से निर्भर नहीं करती, क्योंकि हम देखते हैं कि मिर्गारी जैसे जानवरों को अधमरा करने वाले के प्रति भी नारद मुनि की अहेतु की कृपा हो गई। तो खैर, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए अपने हृदय को साधुओं के प्रति श्रद्धा से, श्रद्धा के भाव से भरें, उनसे सुने भगवान के बारे में, जैसे हम यहाँ प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, और फिर धीरे धीरे भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करके, भगवान की भक्ति करके क्रमशः अपने जीवन को सफल बनाएं, जीवन भर आश्चर्य ही न करते रह जाएं। हरे कृष्णा।